काला सोसाइटी बिल्डिंग की लिफ्ट इस समय बंद थी। डिस्प्ले पर लाल अक्षरों में सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, एरा। रुद्र ने एक नजर डाली और सीढ़ियों की ओर मुड़ गया। उसके हाथ में निक्स थी, निर्जीव, शांत, जैसे वह कभी जीवित हुई ही न हो। पर हवा अलग थी, जैसे किसी ने नीचे से सांस ली हो। सीढ़ियों की पहली पायदान पर कदम रखते ही लाइट हल्की सी झिलमिलाई, दूसरी पायदान, तीसरी। हर कदम के साथ तापमान गिरता जा रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। रुद्र रुका नहीं, भ्रम, उसने धीरे से कहा, दूसरी मंजिल। अचानक पीछे से किसी बच्चे की हंसी, पतली, खोखली, अधूरी। रुद्र ने सिर घुमाया, सीढ़ियां खाली। निक्स की आंख की पुतली 1 मिलीमीटर हिली, बैंगनी चमक बहुत हल्की, जैसे चेतावनी। मैं जानता हूं तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश करोगे, उसकी आवाज शांत थी। पहली मंजिल, अब नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां शुरू होती थीं, जो सीधे तहखाने बेसमेंट की तरफ जाती थीं। वहां की लाइटें हमेशा आधी बुझी रहती थीं, लेकिन आज पूरी तरह अंधेरा था। रुद्र ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, रोशनी आगे बढ़ी, पर जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। पहला कदम नीचे, सीढ़ी पर काले धब्बे थे, जैसे गीले पैरों के निशान, लेकिन उल्टे, जैसे कोई नीचे से ऊपर गया हो पर पैरों की दिशा गलत हो। रुद्र ने ध्यान से देखा, दिलचस्प। दूसरा कदम, हवा भारी। तीसरा कदम, अचानक फ्लैशलाइट बंद, पूरी तरह अंधेरा, और उसी अंधेरे में दर्जनों फुसफुसाहटें, वापस जाओ, यहां मत आओ, तुम नहीं समझते, ये तुम्हारा स्थान नहीं। रुद्र ने आंखें बंद की, सांस स्थिर, अगर इतना ही डर है तो सामने आओ। अचानक सामने दीवार पर परछाइयां उभर आईं, एक नहीं, 10 नहीं, दर्जनों टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां, कुछ के हाथ बहुत लंबे, कुछ के चेहरे बिना आंखों के, कुछ दीवार से आधे बाहर निकले हुए। वे सीढ़ियों पर फैलने लगे, रास्ता रोकने। निक्स की साइड के आसपास हल्की बैंगनी धुंध बनने लगी, पर रुद्र ने उसे रोका, अभी नहीं। परछाइयां अब सीढ़ियों पर उतर रही थीं। एक लंबा हाथ उसके टखने को पकड़ने की कोशिश में बढ़ा, जैसे ही वह छुआ, रुद्र ने जेब से काला धागा निकाला, उसने उसे हवा में घुमाया। सीमा, धागे से हल्की सफेद रेखा निकली और सीढ़ियों पर फैल गई, जहां भी वह रेखा छूती परछाइयां पीछे हट जातीं, जैसे आग से जल गई हों। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, अब वे गुस्से में थीं। तुम अकेले हो, नीचे मौत है, वह तुम्हें नहीं बचाएगी। निक्स की आंखें अचानक खुली, पूरी तरह बैंगनी, और उसी पल सारी आवाजें 1 सेकंड में बंद, सन्नाटा, सीढ़ियों की दीवारें सामान्य, फ्लैशलाइट वापस ऑन। रुद्र आखिरी मोड़ तक पहुंच चुका था, अब सामने था तहखाना का गलियारा, लंबा संकरा, छत से लटकती टूटी तारें, फर्श पर जंग लगा पानी, दीवारों पर पुराने स्टोरेज रूम के नंबर, और अंत में लोहे का बड़ा गेट, मोटा, जंग लगा, बीच में बड़ा ताला। पर अजीब बात, ताला बंद था, लेकिन गेट के अंदर से रोशनी आ रही थी, हल्की हरी, धड़कती हुई, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम के साथ गेट से आती रोशनी तेज होती गई। अचानक उसके पीछे से धड़ाम, ऊपर की सीढ़ियों का दरवाजा बंद हो गया। अब वापसी का रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। फर्श पर अचानक हाथ उभरे, पारदर्शी, ठंडे, वे उसकी पैंट पकड़ने लगे। मत जाओ, मत खोलो, वह जाग जाएगा। रुद्र रुका, उसने नीचे देखा, दर्जनों आत्माएं फर्श के अंदर फंसी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जमीन में दफना दिया हो। वे बाहर निकल नहीं पा रही थीं, लेकिन रोकने की कोशिश कर रही थीं। निक्स की साइड अब खुद ब खुद चमकने लगी, बैंगनी आभा बढ़ती गई।
रुद्र ने धीरे से कहा, मैं उसे जगाने नहीं, निपटाने आया हूं। उसने एक एक कर अपने पैरों से उन हाथों को हटाया, वे दर्द में चीखते पर पीछे हटते। आखिरकार वह गेट के सामने खड़ा था, लोहे का विशाल दरवाजा। उसके पीछे कुछ धड़क रहा था, सांस ले रहा था, जैसे कोई सोया हुआ दानव करवट बदल रहा हो। रुद्र ने हाथ बढ़ाया, ताले को छुआ, ताला बर्फ जैसा ठंडा था। और उसी पल गेट के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, धीमी, गहरी, मानो जमीन के नीचे से आ रही हो, तुम देर से आए हो। निक्स की आंखें पूरी तरह चमक उठी, रुद्र की सांस धीमी हो गई, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा। वह गेट के बिल्कुल सामने खड़ा था, पीछे अंधेरा, आगे अज्ञात, और इसी क्षण काला सोसाइटी बिल्डिंग की दीवारों में हल्का कंपन हुआ, जैसे पूरी इमारत जानती हो कुछ बुरा होने वाला है। अंडरस्कोर तहखाने के उस विशाल लोहे के गेट के सामने खड़ा रुद्र कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर रहा। उसकी हथेली अब भी ताले को छू रही थी, बर्फ जैसी ठंड, पर उस ठंड के नीचे कुछ धड़क रहा था, जैसे ताला सिर्फ धातु का ना हो बल्कि किसी जीवित चीज की उंगली हो, जो भीतर से उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। पीछे अंधेरा था, फर्श के भीतर दबे आत्माओं के हाथ अब शांत थे। वे हिल नहीं रहे थे पर गायब भी नहीं हुए थे, जैसे वे किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हों। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उसने एक लंबी सांस भीतर खींची और उसी क्षण उसके शरीर के भीतर कुछ जागा। वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, वह काली थी, घनी, भारी, जैसे सदियों से जमा हुआ क्रोध, दुख और संकल्प एक साथ सांस लेने लगे हों। उसकी नसों में एक हल्की जलन दौड़ी, दिल की धड़कन धीमी हो गई, पर हर धड़कन के साथ उसके चारों ओर हवा गहरी होने लगी। काला आभामंडल उसके पैरों के पास फैलने लगा, धीरे धीरे, फिर तेजी से। दीवारों पर हल्की दरारें उभर आईं, छत से लटकी टूटी तारें झूलने लगीं। तेखाने के गलियारे की हवा अब स्थिर नहीं थी, वह घूम रही थी। रुद्र ने फुसफुसाया, जागो। उसके हाथ में पकड़ी निक्स की निर्जीव गुड़िया अचानक कांपी। पहले हल्का कंपन, फिर उसकी आंखें खुली, गहरी बैंगनी, लेकिन इस बार उनमें उत्साह नहीं था, इस बार उनमें भूख थी। रुद्र ने अपनी पूरी काली भरी हुई ऑरा को भीतर से बाहर धकेला। वह ऊर्जा उसके सीने से उठी, कंधों से होकर हाथों में पहुंची और सीधे निक्स की गुड़िया में समा गई। कुछ पल के लिए पूरा तेखना अंधेरे में डूब गया, फिर धम, एक अदृश्य झटका हवा में फैला। गुड़िया का शरीर टूटने नहीं लगा बल्कि पिघलने लगा, लकड़ी जैसे तरल बन गई। उसका छोटा सा आकार फैलने लगा, हाथ लंबा हुआ, डंडा बढ़ा, धार चौड़ी हुई। कुछ ही सेकंड में निक्स अब गुड़िया नहीं थी, वो एक विशाल साइज कुल्हाड़ी बन चुकी थी, धार लंबी, चमकती, बैंगनी रोशनी से धड़कती हुई। हवा उसके चारों ओर घूम रही थी। रुद्र ने साइज को दोनों हाथों से पकड़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां उस हथियार को छूती हैं, उसके चारों ओर पर्पल ऑरा घूमने लगा। पहले धीमा चक्र, फिर तेज, उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। उसके कपड़े हवा में लहराए और अचानक उसकी साधारण शर्ट और जीन्स घुलने लगे। काले धुएं की तरह उनकी जगह एक गहरी हुड वाली ड्रेस प्रकट हुई, लंबा काला कोट जिसके किनारों पर हल्की बैंगनी रेखाएं चल रही थीं। हुड उसके सिर पर अपने आप चढ़ गया, उसकी आंखों में हल्की बैंगनी चमक उभरी। उसके हाथों की नसें अब स्पष्ट थीं, पर उनमें दर्द नहीं था बल्कि एक अजीब स्थिरता। उसके शरीर पर लगे पुराने घाव, जो अभी सीढ़ियों पर आत्माओं के स्पर्श से हल्के हल्के जले थे, खुद ब खुद भरने लगे। त्वचा के नीचे हल्की रोशनी घूमी, घाव बंद, सांस स्थिर, हीलिंग पावर सक्रिय हो चुकी थी। रुद्र ने गेट को देखा। चलो देखते हैं तुम कितने मजबूत हो, उसने साइद को पीछे घुमाया। बैंगनी ऊर्जा धार के किनारे इकट्ठा होने लगी। एक पल की चुप्पी, फिर स्विश स्विश, साइद हवा को चीरती हुई सीधे ताले पर गिरी। धम, एक विस्फोट जैसी आवाज, चिंगारियां हर दिशा में फैली। पूरा तेखना रोशनी से भर गया। लोहे का ताला एक ही वार में टूटकर दो टुकड़ों में गिर पड़ा। फर्श पर गिरते ही वह राख की तरह बिखर गया, कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, पर दरवाजा नहीं खुला, वह वहीं खड़ा था, स्थिर, अचल, जैसे ताला सिर्फ एक दिखावा था, जैसे असली बंदिश कहीं और हो। रुद्र ने हल्की भौहें सिकोड़ ली, तो ताला असली नहीं था। गेट के भीतर से हल्की हंसी गूंजी, भारी, गहरी, तंज से भरी। तुम सोचते हो इतना आसान होगा, रुद्र ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर से साइड उठाई, इस बार उसकी पकड़ और कस गई। पर्पल और तेज हो गया, दीवारों पर बैंगनी लहरें दौड़ने लगीं। उसने पूरी ताकत से गेट के बीचों बीच वार किया, धड़ाम। इस बार चिंगारियां और तेज निकली, लोहे पर गहरी लकीर पड़ी, पर गेट टूटा नहीं। साइद की धार से टकराकर धातु ने एक अजीब ध्वनि निकाली, जैसे दो तलवारें टकराई हों। रुद्र एक कदम पीछे फिसला, पर गिरा नहीं। उसने देखा गेट के ऊपर हल्की हरी रेखाएं चमक रही थीं, एक पैटर्न, जैसे कोई मुहर, जैसे किसी ने इस दरवाजे को सिर्फ लोहे से नहीं, किसी और चीज से बांधा हो। रुद्र की सांस अब भारी थी, पर डर नहीं। उसने तीसरी बार साइद उठाए। इस बार वार करने से पहले उसने अपनी काल भैरों की ऑरा को और गहराई से सक्रिय किया। उसकी नसों में बैंगनी रोशनी दौड़ी, हाथों की पकड़ और मजबूत हुई। उसने पूरी शक्ति से वार किया, धम्मम, इस बार गेट नहीं टूटा, लेकिन पूरे तेखाने की दीवारें कांप उठी, छत से धूल गिरने लगी, फर्श के भीतर दबे आत्माओं के हाथ फिर से हिलने लगे, चीखें, चिंगारियां, और गेट से टकराकर ऊर्जा वापस रुद्र की ओर उछली। उसके सीने पर हल्का झटका लगा, पर हीलिंग ऑरा तुरंत सक्रिय हुई, घाव बनने से पहले ही भर गया। वह वहीं खड़ा रहा, गेट अब भी बंद, पर अब उसके बीचों बीच हल्की दरार उभर आई थी, बहुत हल्की, जैसे किसी ने पतली रेखा खींच दी हो। भीतर से आवाज फिर आए, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, रुद्र ने हुड के भीतर से धीमे स्वर में कहा। वो वक्त बताएगा, उसने साइद को जमीन पर टिका दिया। बैंगनी ऑरा उसके चारों ओर घूम रहा था, गेट अब भी बंद था, लेकिन ताला टूट चुका था, मोहर कांप चुकी थी और तेखाने के भीतर जो भी था वह अब जाग चुका था। हवा और भारी हो गई। दीवारों के पीछे से धीमी धड़कन सुनाई देने लगी, जैसे पूरी इमारत का दिल उसी गेट के पीछे हो। रूद स्थिर खड़ा था। अगला वार शायद गेट पर नहीं होगा, शायद किसी और चीज पर। और शायद ये दरवाजा तोड़ने से पहले उसे समझना पड़ेगा कि इसे बनाया किसने था। तेखाने की हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, वह इंतजार कर रही थी। और रूद भी। अंदस को तेखाने के उस ठंडे भारी अंधेरे में जब रूद ने गेट पर हमला करना रोका तो कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। सिर्फ अंदर से आती धीमी धड़कन और दीवारों के भीतर फंसी आत्माओं की कराह। उसने धीरे से साइद को नीचे किया। बैंगनी आभा अभी भी उसके चारों ओर घूम रही थी, पर उसकी आंखें अब गेट पर नहीं थीं। वे दीवारों की तरफ मुड़ी, वहां जहां अभी कुछ देर पहले दर्जनों आत्माएं चीख रही थीं। तुम लोग डर से चिल्ला रहे हो या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? उसकी आवाज भारी थी पर नियंत्रित। फर्श के भीतर से एक कराह उठी। रूद झुका। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों के आसपास काली ऊर्जा घूमने लगी, काल भैरों की जागी हुई शक्ति। बाहर आओ। जैसे ही उसकी हथेली जमीन को छुई, पत्थर में दरार पड़ी। धुएं जैसी एक आकृति बाहर खींच आई, पुरानी, झुर्रियों भरी, झुकी हुई, एक बहुत बूढ़ी आत्मा। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, शरीर धुंध जैसा पर चेहरे पर भय साफ। वह छूटने की कोशिश करने लगा। मत मत छुओ मुझे, वह जाग जाएगा। रूद ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसी क्षण उसने अपने भीतर की काल भैरव ऊर्जा को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। तेखाने की हवा भारी हो गई, दीवारों पर छायाएं कांपने लगीं। उसकी पकड़ से काली लपटें उठी और उस आत्मा को घेर लिया। वो चीखने लगी, एक तीखी फटी हुई आवाज जो इंसानी नहीं थी। उसका आकार बदलने लगा, झुर्रियां सिकुड़ने लगी, रीढ़ सीधी हुई, चेहरा छोटा होने लगा। कुछ ही पलों में वह बूढ़ी आत्मा एक छोटे बच्चे के रूप में बदल गई, लगभग 10 साल का, बिखरे बाल, धूल से सना चेहरा। पर उसकी आंखें, वे बूढ़ी थीं, गहरी, चालाक। रूद ने उसे घूरा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तो काका, आपसे फिर मुलाकात हो गई। बच्चा मुस्कुराया, पर जब उसने बोला उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, खुरदुरी, धीमी, व्यंग्य से भरी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक दिन में इतने ताकतवर हो जाओगे, नहीं तो पिछली बार ही तुम्हें खत्म कर देता। रूद की पकड़ और कस गई। पिछली बार तुमने मुझे गेट से दूर रखने की कोशिश की थी और आज भी वही कर रहा हूं। बच्चा हंसा, तुम समझते नहीं हो, ये दरवाजा खुला तो सब खत्म। रूद कुछ पूछता उससे पहले अंदर से आवाज आई, नहीं, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, माफ कर दो। एक लड़की की आवाज, फटी हुई, डरी हुई, और उसके बाद कब्दों के फटने की आवाज, जैसे किसी को घसीटा जा रहा हो। रूद का दिल एक पल को रुक गया। उसने उस आवाज को पहचाना, रामू काका की बेटी। उसकी उंगलियां कांप गईं। जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा था। उसकी सांस भारी हो गई, आंखों में बैंगनी चमक गहरी हो गई। बच्चा मुस्कुराया, ओह, तो पहचान लिया तुमने। हाँ, वही है, बहुत रोती है, बहुत चीखती है, पर हमारे मालिक को उसकी आवाज पसंद है। उससे आगे वो बोल पाता। रूद ने अपनी ऊर्जा को रस्सी का रूप दिया। काली औरा उसके हाथ से निकली और बच्चे के चारों ओर लिपट गई। चुप, एक झटके में उसने उसे जमीन पर दे मारा। धम, बच्चा कराहा, पर उसकी मुस्कान नहीं गई। रूद पलटा, वो तेजी से गेट की तरफ बढ़ा। उसने साइद उठाई और पूरी ताकत से दरवाजे पर वार किया। चिंगारियां, धातु की तीखी आवाज, अंदर से लड़की की चीख और तेज, बचाओ, रूद फिर वार करता है। और तभी गेट पर बने हरे पैटर्न चमकने लगे। धीरे धीरे वे रेखाएं मंत्रों में बदलने लगीं, प्रतीक उभर आए, घुमावदार, प्राचीन, जैसे किसी पुराने तांत्रिक मुहर के। रूद ने तीसरा वार किया, पर दरवाजा जस का तस। अंदर की चीखें अब तेज, बेतरतीब। मुझे छोड़ दो प्लीज, रूद की सांस भारी हो गई। खुल जा। तभी उसके हाथ में पकड़ी साइद हल्का कांपी और पहली बार एक साफ आवाज उसके दिमाग में गूंजी, निक्स, इसे बल से नहीं, समझ से खोलो। रूद ठिठक गया, पर कैसे? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर मुझे उस बच्चे के पास ले जाओ। रूद मुड़ा, बच्चा अभी भी जमीन पर बंधा था, काली औरा की रस्सियों में जकड़ा। वह हंस रहा था, देखा, तुम नहीं खोल पाओगे, हमारे मालिक आराम कर रहे हैं, उनकी कृपा से मैं आज भी जवान हूं। तुम लोग दम रखते हो तो और लड़कियां लाओ, मालिक तुम्हें भी अमर कर देंगे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि निक्स का धैर्य टूट गया। साइद पिघली और फिर से गुड़िया का रूप ले लिया। वह हवा में उठी, सीधे बच्चे की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें पूरी बैंगनी, बस उसके हाथों से पर्पल ऊर्जा आग की तरह निकली। बच्चा जलने लगा। वह पहले चीखा, फिर अचानक हंसने लगा, पागलों की तरह, मालिक अमर रहें, मालिक अमर रहें। निक्स की ऊर्जा अब और तेज हो गई, वह उसकी आत्मा को रिफाइन करने लगी। जैसे किसी गंदी धातु को भट्टी में शुद्ध किया जा रहा हो। उसकी यादें बाहर आने लगीं, पुरानी तस्वीरें, एक गांव, हरे खेत, एक गुफा, सरपंच और खून। बच्चे की आत्मा धीरे धीरे राख में बदल गई और अंडस्को निक्स धीरे धीरे हवा में तैरती हुई रूद के चेहरे के पास आ गई। उसकी छोटी सी गुड़िया वाली देह से बैंगनी रोशनी रिसने लगी। उसने बिना कुछ कहे अपनी हथेली से रूद के सिर को पकड़ा और अपनी कलपुतलियों की आंखों के सामने उठा दिया। एक पतली किरण उसकी पुतलियों में उतर गई। क्षण भर में तेखाने की दीवारें धुंधली होने लगीं। लोहे का गेट धुएं में बदल गया। फर्श, जंग, सील सब जैसे पानी में घुलने लगे। रूद को लगा जैसे किसी ने उसे भीतर से खींच लिया हो। अचानक उसके कानों में पक्षियों की आवाज आई, हल्की हवा, मिट्टी की खुशबू, दूर बच्चों की हंसी। उसने आंखें झपकाई और जब उसने दोबारा देखा, वह तेखाने में नहीं था, वह एक खुले मैदान के बीच खड़ा था। चारों तरफ कच्चे घर, छप्पर की छतें, हरे खेत दूर तक फैले हुए, आसमान साफ नीला। कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, बच्चे धूल में खेल रहे थे, पुरुष हंसते हुए बैलगाड़ी धकेल रहे थे। रूद एक पल को स्तब्ध रह गया। मैं यहां कैसे? उसने अपने हाथों को देखा। वो अभी भी हुड वाली काली ड्रेस में था, शायद उसके हाथ में थी, पर आसपास किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई उसे देख नहीं रहा था। वो उलझन में आगे बढ़ा। एक आदमी सामने से आ रहा था, धोती पहने, कंधे पर लकड़ी का गट्ठर। रूद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सुनिए, ये कौन सा गांव है, यहां क्या? उस आदमी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वह सीधे रूद के भीतर से गुजर गया। ठंडी लहर उसके सीने को चीरती हुई निकली। रूद एक कदम पीछे हट गया। उसने मुड़कर देखा, आदमी अपने रास्ते चलता रहा जैसे वहां कोई था ही नहीं। उसकी आंखों में समझ की चमक आई, यादें। उसने चारों ओर देखा। मैं उस बच्चे की यादों में हूं। हवा में हल्की धुंध तैर रही थी। दृश्य बदलने लगा। अब वही गांव, पर कुछ समय बीत चुका था। लोग एक जगह इकट्ठा थे, ढोल बज रहे थे, किसी को सरपंच चुना जा रहा था, भीड़ तालियां बजा रही थी। एक मध्यम आयु का आदमी आगे आया, चेहरे पर विनम्र मुस्कान, हाथ जोड़कर झुकता हुआ। लोग खुश थे, नया सरपंच, ईमानदार आदमी, कोई कह रहा था। रूद ने देखा, शुरुआत में वह आदमी सचमुच अच्छा दिख रहा था। वह झगड़े सुलझा रहा था, गरीबों की मदद कर रहा था, गांव में कुआं खुदवा रहा था। दृश्य फिर बदला। रात, आसमान बादलों से घिरा। गांव की एक औरत अपने घर से बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर डर था, पीछे वही सरपंच खड़ा था, उसकी आंखें बदल चुकी थीं, अंधेरी, ठंडी। उसके हाथ में कोई अजीब सा ताबीज था। दृश्य झटके से बदला। जंगल, गुफा का मुहाना, औरत बेहोश पड़ी थी, सरपंच मंत्र पढ़ रहा था। गुफा के भीतर से हरी रोशनी रिस रही थी। रूद के कानों में धीमी गहरी आवाज गूंजी, मानो किसी विशाल चीज की सांस। वह आगे बढ़ना चाहता था, पर वह सिर्फ दर्शक था, वह कुछ छू नहीं सकता था, कुछ बदल नहीं सकता था। दृश्य तेजी से बदलने लगे, औरतें गायब, गांव में फुसफुसाहट, डर, बच्चों का रोना, फिर भीड़, गुस्सा। लोग मशाल लेकर सरपंच के घर की ओर भाग रहे थे। सरपंच गुफा की ओर भागा। उसने कुछ अंतिम मंत्र पढ़े। गुफा के भीतर से एक काला आकार उभरा, पूरा नहीं, बस छाया, पर उसकी मौजूदगी ही घातक थी। लोग चीखने लगे, कुछ वहीं गिर गए, कुछ भागे, कुछ जिंदा जल गए। आग, धुआं, चीखें। गुफा का मुहाना पत्थरों से बंद किया जा रहा था और उस रक्त और हड्डियों के ताले से बंद किया। लोग रो रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, आज का दिन काला है, काला दिन। दृश्य धुंधला हुआ। आवाज आई, काली पहाड़ी। समय फिर बदला। वर्ष बीते, जंगल सूख गया, गुफा के ऊपर मिट्टी भर गई। मशीनों की आवाज, खुदाई, बुलडोजर, मजदूर। एक मजदूर अचानक गड्ढे में गिरा, दूसरा चीखा, पर ठेकेदार हंसा, अंधविश्वास है सब, काम करो। सीमेंट डाला गया, लोहे की रॉड, कंक्रीट, दीवारें उठी, गुफा में दरार, काली पहाड़ी सोसाइटी बन गई। रूद की सांस भारी हो गई, दृश्य टूटने लगा, सब कुछ धुएं में बदल गया। और अचानक वो फिर से तेखाने के सामने खड़ा था। लोहे का गेट, हरे मंत्र चमक रहे थे, निक्स उसके पास तैर रही थी, उसकी आंखों में हल्की थकान थी। रूद ने गहरी सांस ली, तो यह मोहर है, सिर्फ दरवाजा नहीं। गेट अब अलग लग रहा था, उस पर बने प्रतीक अब उसे समझ आने लगे थे। ये बल से नहीं टूटेगा, ये रक्त और हड्डियों से बंधा है, और अंदर जो है वह वही दानव है। रूद की मुट्ठी साइड पर कस गई। अब वह सिर्फ लड़ने नहीं आया था, वह एक अधूरी कहानी को खत्म करने आया था। तेखाने में फिर वही धीमी धड़कन गूंजी और अंदर से लड़की की बहुत कमजोर आवाज, बचाओ, समय सच में कम था। अंडस्को और कहीं ऊपर डायरेक्टर भी छत से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार गंभीरता आई। तो ये लड़का सील पढ़ सकता है। तहखाने में फिर वही धड़कन गूंजी। अंदर से लड़की की आवाज अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। समय कम था। रूद ने साइद कसकर पकड़ी। अब ये सिर्फ ताकत का सवाल नहीं था, यह इतिहास का ऋण था और वह उसे चुकाने वाला था।